അനന്തവർണാണദംശന സഹാവം ബോക്ഷാമിണിയമസാരം കേവലീഷു കേവലീഭണിതം. പൂജ്യ ഗുരുദേവ് ശ്രീ കാ നിയംസാർ ജി പരമാഗം കി 50 നമ്പർ കി ഗാഥ കാ ആജ് കാ പ്രവചൻ സുൻകർക്കെ ആപ്കോ ലഗാ ഹോഗാ. കുച്ച് വിശേഷത ലഗീ കി നീ ലഗീ? ഹാ, കിത്നി ഗജബ് കി ബാത് ഹൈ. ഗുരുദേവ് ശ്രീ ഖുദ് കിത്നി ബാർ ബോലാ ഗജബ് ഛ ഗജബ് ഛ, യാനി അന്ദർ സേ ഉൻകോ ഭി കിത്ന ആഹ്ലാദ് ഓർ ഉല്ലാസ്. വേസേ തോ ഉൻകോ ഹർ പ്രവചൻ മേ ഹി ആതാ ഹൈ, ലേക്കിൻ ആജ് കേ പ്രവചൻ മേ एक तो जब शुरुआत की थी उनने तब ये बात कही थी, घनी कठिन, बहुत कठिन गाथा है, बहुत सख्त गाथा है. और सख्त गाथा कहने का कारण ये कहा था कि इस गाथा में तो छायिक भाव को भी व्यवहार नहीं के विषय में डाल देंगे. और बाद बाद में जैसे जैसे प्रवचन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे तो अपन सोच सकते हैं कि ये कुंद कुंद आचार्य देव का गरिष्ठ माल है. नहीं होता गरिष्ठ माल का मतलब समझे ना, कि हमारे यहां राजस्थान में एक पद्धति होती थी, अभी तो खत्म हो गई है, लेकिन पुराने जमाने में एक पद्धति होती थी कि वो जो लड्डू बाटी चूरमा बनाते थे ना ब्राह्मण लोग रसोई के अंदर, तो दो तरह के चूरमा बनते थे. और ब्राह्मण ये बोलते थे कि हमारा चौका है, इसमें तुम प्रवेश नहीं करोगे. तो वो चूरमा कैसा होता था कि एक चूरमा जो जनरल पब्लिक के लिए परोसने का होता था, वो चूरमा में एक किलो चूरमा में एक किलो घी होता था. और जो वो ब्राह्मण लोगों का जो चूरमा होता था उसमें एक किलो चूरमा में चार किलो घी होता था. आगे समझ में, ये समय सार प्रवचन सार आदि ग्रंथ है ना, कि अपन लोगों के लिए है कि ये तो एक किलो घी में एक किलो चूरमा में एक किलो घी जैसा है. और ये नियम सार तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमने निज भावना के निमित्त बनाया है. कि भाई साहब, जब वो एक किलो घी वाला चूरमा पचाना मुश्किल समझ में आएगा कि नहीं, तभी चार किलो घी वाला. लेकिन अपना महाभाग्य कि अपन लोगों को वो चार किलो चूरमे का घी वाला चूरमा पचाने का भी सौभाग्य गुरुदेव श्री ने प्रदान किया. कहां ये बातें थी, एक बहुत अच्छी बात गुरुदेव ने कही थी शुरू में कि अभी तो इसको शुभ राग को हेय मानना कठिन पड़ता है. एक जगह प्रवचन में, दूसरे प्रवचन में एक जगह बोला कि जब शुभ राग को हेय बोले ना आचार्य भगवान, तो इसका पसीना उतरता है ना. यहां तो किसको हेय कहा, छायिक भाव को भी हेय में डाला. क्यों हेय में डाला, कि एक समय की पर्याय है, उत्पाद वे वाली दशा है, उस दशा के आश्रय से कभी भी त्रिकाल शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती. भले ही वो शांत स्वरूप दशा है, लेकिन उस दशा के आश्रय से शांति नहीं आती. भले ही वो केवल ज्ञान की दशा हो, लेकिन केवल ज्ञान की दशा के पास अगले समय हमें देने के लिए कुछ नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि अगले समय वो दशा खुद ही नहीं है. गुरुदेव ने एक न्याय दिया था लास्ट लास्ट में, पर्याय में से पर्याय नहीं आती. जैसे परद्रव्य में से पर्याय, अपनी पर्याय नहीं आती, इसी तरह पर्याय में से पर्याय नहीं आती. अब पर्याय में से जब पर्याय नहीं आती, तो तुम पर्याय के भेद क्यों करते हो, ये शुद्ध पर्याय है, ये अशुद्ध पर्याय है, ये विकारी पर्याय है, ये अविकारी पर्याय है, ये अपूर्ण पर्याय है, ये पूर्ण पर्याय है. कि ये जो शुद्ध अशुद्ध के भेद, ये पूर्णता अपूर्णता के भेद, ये मलिनता और निर्मलता के भेद, ये करते क्यों हो, कि कोई भी पर्याय हो, उस पर्याय का जन्म क्षण एक समय से अधिक नहीं है. और किसी भी पर्याय में से अगले समय की पर्याय नहीं आएगी। एक राजा का उदाहरण, राजा की बात करें अपन, कि एक राजा है और एक राजा के घर में पुत्र का जन्म हुआ, ठीक है। अब पुत्र का जन्म हुआ तो राजा के घर में पुत्र का जन्म होने का मतलब समझते हैं ना अपन लोग, क्या होता है कि सब खुशियां मनाई जाती है, पूरा राजा घर, पुत्र का जन्म हुआ राजा के यहां और खुशियां सारा शहर मनाता है, क्योंकि राजा की ओर से बहुत सी सुविधाएं उस समय प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले राजा ने उस ज्योतिषी को बुलाया कि ए भाई जरा देखो, ये हमारा जो पुत्र जन्मा है, राजकुमार का जन्म हुआ है, इसका भविष्य क्या है जरा ये बताओ। तो ज्योतिषी ने कहा, जन्म उसका समय नक्षत्र वगैरह देख करके कहा कि महाराज, राजकुमार के ज्योतिष चक्र ये कहता है कि इसके चक्रवर्ती होने का योग है। जैसे ही ये बात सुनी तो राजा साहब फूल के कुप्पा हो गए, मेरा बेटा चक्रवर्ती, मेरा बेटा चक्रवर्ती। कि सुनो महाराज, कि बोलो, परंतु, क्या कहा, परंतु। अब परंतु कह के बेचारा मौन हो गया कि बोलो ना परंतु माने क्या। कि महाराज क्या कहूं, कहते हुए मेरा हृदय फटा जाता है। कि बोलो तो सही, परंतु इस राजकुमार की आयु 15 दिन की है, 16वें दिन ये बचेगा नहीं। अब बोलो, जिसकी आयु 15 दिन की है उसके चक्रवर्ती का योग भी अगर जन्म कुंडली में हो तो उस चक्रवर्ती के योग का क्या करें, अभी ये बताओ। 15 दिन का बेटा तो चक्रवर्ती संभालेगा नहीं, है ना। तो इसी तरह ये पर्याय में केवल ज्ञान है, ये पर्याय में छायिक भाव है, इस पर्याय में सम्य दर्शन है, इस पर्याय में मोक्ष दशा है, सब है, लेकिन पर्याय की मुद्दत एक समय की है। बात पूरी हो गई, खत्म हो गया काम, यही घबड़ा नहीं। पर्याय की मुद्दत भले ही एक समय की हो, लेकिन उसी पर्याय के पीछे एक रूप त्रिकाल ध्रुव कारण परमात्मा जो विद्यमान है, वो अनादि अनंत नित्य शुद्ध पवित्र पदार्थ विद्यमान है, वो स्वद्रव्य है, और उसका अवलंबन करने से तेरे को सम्य दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक की सारी पर्याय प्रकट होंगी, है ना। उस शुद्ध तत्व के अवलंबन की बात है, मतलब वो अवलंबन का विषय वो है। देखो दो बातें हैं, वस्तु में से पर्याय का अभाव नहीं करना, क्योंकि वस्तु में से पर्याय का अभाव नहीं कर सकते। अभी गुरुदेव बोल रहे थे ना, क्या एक बहुत गजब की बात उन्होंने कही, क्या बात कही कि पर्याय बिना की वस्तु होती नहीं, पर्याय बिना की वस्तु तो गधेड़ाना सिंगड़ा जेवी छे। बोला था, आया था कि पर्याय के बिना की वस्तु कैसी है कि गधे के सिंह के समान है। और फिर पर्याय का निषेध भी कर रहे हो, एक समय की पर्याय वो है, ये वो आश्रय करने योग्य नहीं है। कि भाई साहब वो है ये कहते ही उसका अस्तित्व सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। जिसका अस्तित्व ही नहीं होवे, कोई अपने से, अपना अपन मान लो किसी कक्षा के विद्यार्थी हो और अपने से कोई ये कहे कि भाई एक निबंध आपको लिखना है, क्या निबंध लिखना है, कि आपको अपनी आंखों देखी एक घटना को निबंध के रूप में आपको लिखना है, कि ठीक है लिख देंगे, कि लिखो बंद्या पुत्र के विवाह का वर्णन, करो वर्णन अभी। तो क्या कहेंगे अपन कि भाई साहब बंद्या के पुत्र होता ही नहीं, तो बंद्या पुत्र के विवाह का वर्णन कैसे हो सकता है, है ना। तो जो पदार्थ अगर वो पर्याय होती ही नहीं तो उसकी हेयता का क्या मतलब है, है तब है कह रहे हैं ना। तो वस्तु कभी पर्याय बिना की नहीं होती, ध्यान देना, और दृष्टि के विषय में कभी पर्याय नहीं होती। क्या कहा, दो बातें, क्या कहा कि वस्तु कभी भी पर्याय के बिना नहीं होती, क्योंकि पर्याय बिना की वस्तु गधे के सिंह के समान है, और दृष्टि के विषय में कभी पर्याय नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि दृष्टि खुद पर्याय है। अगर वो पर्याय दृष्टि जो पर्याय है, जो विषय करने वाली है, यदि वो विषय में शामिल हो गई, विषय कौन करेगा। जब किसी कन्या की शादी होती है ना तो दो पक्ष होते हैं, एक होता है कन्या पक्ष और एक होता है वर पक्ष। तो कन्या पक्ष क्या करता है कि वर पक्ष के गले में जो भी लोग आते कि नहीं आते वर पक्ष की ओर से, तो उनके गले में वरमाला डाल मतलब वो सॉरी माला डालना, वो माला डालना वो कन्या पक्ष के लोग करते हैं। और माला डलवाने का काम कौन करता है कि वर पक्ष के लोग करते हैं। अब जो माला डालने वाला है, जो माला डालने वाला है यदि वही डलवाने वालों के पक्ष में खड़ा हो जाए तो माला डालेगा कौन, ये तो बताओ जरा, है ना। तो दृष्टि, दृष्टि खुद पर्याय है। गुरुदेव ने ही बोला था आज कि दृष्टि खुद पर्याय है और दृष्टि रूप पर्याय माने दृष्टि रूप पर्याय भी दृष्टि के विषय में नहीं है, दृष्टि भी दृष्टि के लिए है ही। ये गुरुदेव का वाक्य बोल रहा हूं मैं, दृष्टि दृष्टि के लिए है ही है, क्योंकि दृष्टि का विषय दृष्टि नहीं है, दृष्टि का विषय त्रिकाली स्वभाव है। ऐसी अद्भुत से अद्भुत चर्चा ये 50 नंबर की गाथा में गुरुदेव श्री ने करी है। क्या गजब की गाथा है और कितना गजब का मैंने समझ लो, एक एक ने कहा भी, गुरुदेव ने बोला ना क्या गजब किया है, 50वीं गाथा है तो क्या शो गजब करियो छे। तो शिष्य किसी ने मुमुक्षु ने कहा कि साहब आपने गजब किया है। और सच है ये बात, देखो गाथाओं गाथाएं लिखी हैं, सच बोलता हूं आपसे कि इन गाथाओं का मर्म यदि गुरुदेव ने नहीं समझाया होता तो गाथाएं तो लिखी थी शास्त्रों में। बहुत से लोगों को ये अभिमान रहता है अरे शास्त्र में तो थी, गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया है शास्त्रों में तो सब बातें थी। मैंने कहा भाई साहब बात तो ठीक है, आपकी कहने की बात तो ठीक है कि शास्त्र में बातें थी गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया है, बात तो ऐसी ही है, लेकिन आपके वजन वजन में अंतर है। क्या अंतर है कि शास्त्र में तो बातें थी लेकिन गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण नहीं किया होता, यहां वजन आना चाहिए आपका। वजन किस पर आना चाहिए, वजन शास्त्र में बात थी इस पर नहीं आना चाहिए, शास्त्र की बात का स्पष्टीकरण गुरुदेव के द्वारा नहीं हुआ होता तो क्या होता, इस बात पर वजन आना चाहिए। हमारा वजन कहां चला गया, शास्त्र में तो थी ना, गुरुदेव ने स्पष्टीकरण ही तो किया है। तो मैंने कहा जो आज तुम ये बोल सकते हो ना कि गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया है, मैंने कहा यह भी गुरुदेव का ही प्रताप है, यह समझ लेना। क्यों भैया, कि अगर शास्त्र में थी तो गुरुदेव के पहले समय सार पढ़ने वाले लोग ये क्यों नहीं निकाल पाते थे, शास्त्र में तो थी ये क्यों नहीं ये बात सामने आती थी कि दृष्टि का विषय पर और पर्याय से पार त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा है, ये बात क्यों नहीं आती थी। आत्मा शुद्ध है ये बात तो करते थे लोग, लेकिन आत्मा की शुद्धता के सामने नहीं खड़ा करते थे। आत्मा निश्चय नहीं से शुद्ध है, मैंने आत्मा शुद्ध है यह नहीं कहना था उनको, आत्मा निश्चय नहीं से शुद्ध है। तो गलती क्या हुई कि गलती हुई बहुत बड़ी, क्या हुई कि आत्मा निश्चय नहीं से शुद्ध है तो उसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा व्यवहार नहीं से अशुद्ध है, यह निश्चय नहीं का प्रतिपक्ष हमने उसके सामने रखा। अरे आत्मा किसी नए से शुद्ध नहीं है, आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध है, आत्मा स्वभाव से ही निर्विकारी है और उस स्वभाव का कथन करने वाले नए का नाम निश्चय नए है। आत्मा निश्चय नए से शुद्ध नहीं है, आत्मा स्वभाव से शुद्ध है और उस स्वभाव की शुद्धता को बताने वाले नए का नाम निश्चय नए है। नए शब्द तो गुरुदेव ने भी यही बोला और शब्द दूसरे लोग भी यही बोलते थे, लेकिन उनके शब्द बोलने बोलने में जमीन आसमान का अंतर होता था अभिप्राय की अपेक्षा से। क्या मतलब कि गुरुदेव ने भी कहा कि आत्मा निश्चय नहीं से शुद्ध है और दूसरे लोग भी बोलते थे आत्मा निश्चय नहीं से शुद्ध है, तो इसमें अंतर क्या हुआ, अभिप्राय का अंतर है। शब्द वही है अरे निश्चय नय से शुद्धे का मतलब उस वो ऐसा निश्चय नय है उस द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का ना, जो निश्चय नय से तुम बोल रहे हो, कहते वो ऐसा शुद्ध ऐसा निश्चय नय है कि जिसका प्रतिपक्षी कोई दूसरा नहीं है। क्या मतलब? आत्मा स्वभाव से शुद्ध है और आत्मा स्वभाव से कभी भी अशुद्ध हुआ नहीं है, नहीं और अनंत काल में कभी होगा नहीं। ऐसे स्वभाव का प्रतिपादन करे उसका नाम नय है, क्योंकि वस्तु नय से नहीं होती। ध्यान से सुनना, वस्तु नय से नहीं होती, वस्तु का प्रतिपादन करने का नाम नय है, वस्तु के जानकारी करने का नाम है नय है। अग्नि गर्म है तो अग्नि गर्म है तो निश्चय से एक व्यवहार से बताना जरा, निश्चय से तो फिर व्यवहार से ठंडी, ये हुआ ना इसका मतलब, तो कि निश्चय से गर्म है ना, व्यवहार से ठंडी है। चीनी मीठी है ना, मीठी हाँ है तो चीनी मीठी है तो निश्चय से है कि व्यवहार से है? अरे वो स्वभाव से ही मीठी है। अब उस स्वभाव का प्रतिपादन करे उसका नाम निश्चय नय है, और उस निश्चय नय का कोई प्रतिपक्ष नहीं होता। ये देवसेन आचार्य देव ने सुत भुवन दीपक नय चक्र में लिखा है। मैं स्वभाव से ही शुद्ध हूं, मेरी शुद्धता का कोई प्रतिपक्ष है ही नहीं। तो पर्याय में तो अशुद्धता है ना, तो हमने स्वभाव के प्रतिपक्ष की बात की है, तुम पर्याय कहां से लाए बताओ? स्वभाव का कोई प्रतिपक्ष है तो पर्याय तो परतत्व है। अब परतत्व की अशुद्धता से मेरी शुद्धता कहां प्रभावित होती है? क्या कहा? आई बात समझ में? नहीं पर्याय परतत्व का अग्नि कहा? यहां पर चारों भावों को परद्रव्य परभाव यदि एयम का अग्नि का, तो अगर पर पर्याय रूप पर तत्व में अशुद्धता है तो उससे मेरी शुद्धता कहां प्रभावित होती है? मैं तो पहले से ही शुद्ध हूं, और जब मैं पहले से ही शुद्ध हूं तो उस पर्याय रूप पर तत्व ने मेरी शुद्धता का स्वीकार करके शुद्ध रूप परिणमन कर लिया, तो उसके शुद्ध रूप परिणमन करने से मेरी शुद्धता में कहां फर्क पड़ा? नहीं आया समझ में? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? गलत बात है। इसलिए आचार्य देव ने जो अपना 71 कलश चल रहा है कि पहले से ही शुद्धता है, तू शुद्ध स्वीकार करेगा तो शुद्धता होगी, कि ऐसी आत्मा को अपेक्षा नहीं है, ऐसे द्रव्य स्वभाव को अपेक्षा नहीं है, ऐसा जो त्रिकाल एक रूप शुद्ध कारण परमात्मा है, कि उसमें चाहे वो कुबुद्धि का आत्मा हो और चाहे सुबुद्धि का आत्मा हो। आज गुरुदेव के प्रवचन के पहले, 50 गाथा के प्रवचन के पहले 73 नंबर का कलश आया था, है ना, 7 हाथ का शरीर और 72 हाथ का कलेजा हो तो वो बात पचा सके। क्या कहा था? क्या कहा था उस कलश में? मुक्ति में और संसार में कोई तफावत नहीं है। बोलो, अभी तो हम राग में भेद करते हैं, है ना, अभी तो हम विकार में भेद करते हैं, अभी तो हम मलिनता में भेद करते हैं, मलिनता में भेद करते हैं। गुरुदेव का एक उदाहरण है, थोड़ा उदाहरण तो गंदा लगेगा अपने को, कैसा कैसा उदाहरण है, नहीं गुरुदेव का उदाहरण है इसलिए बोलता हूं। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे कि कोई एक तो सूखी रोटी खावे, सूखी रोटी, और सूखी रोटी खावे और दूसरा कोई आदमी वो क्या बोलते थे, 4 शेर घी और 4 शेर बेसन, मैसूर पाक है ना, और 4 शेर घी और 1 किलो आटा उसका शकर पारा, ये गुरुदेव बोलते थे ना, ये गुरुदेव का उदाहरण है, है ना। तो वो अब मान लो कोई वो 4 शेर घी वाला मैसू पाक खावे और कोई चाहे सूखी रोटी खावे, और दोनों के परिणाम में जो मल पैदा होता है उस मल और मल में क्या अंतर है जरा बताना? गुरुदेव का उदाहरण है, मेरा नहीं है, है? क्या अंतर है? करे साहब ये तो मैसूर पाक का मल है। अरे भैया मैसूर पाक का हो कि सूखी रोटी का हो, हाथ छू जाए तो 3 बार धोना पड़ता है साबुन से, समझ में आया? कि ऐसे ही शुभ राग रूप मल हो कि अशुभ राग रूप मल हो, वो मल है, वो विकार है, और विकार में कभी भेद नहीं करना। यहां जब विकार, हम तो विकार विकार में भेद करते हैं, यहां आचार्य कहते हैं शुद्ध कुबुद्धि और सुबुद्धि में पहले से शुद्धता है, उसमें कुछ भी भेद। क्या मतलब? देखो कितनी बढ़िया बात ली थी ये, अपना जो ये चल रहा था ना, ये निकालो अपना जो पेज नंबर है इसमें, कारण कार्य नियम में 263 पेज नंबर चल रहा था, बहुत गजब की गाथा है, एक एक श्लोक एक एक लाइन गजब है। उसका दूसरा पेरा, तेम नामा काई पण भेद, कुछ भी भेद, काई पण भेद, हूं क्या नैथी जानू। तो आज बात आ गई थी कि क्या नैथी जानू, अरे भैया संसार पर्याय और मोक्ष पर्याय कहते दोनों व्यवहार नहीं का विषय है, दोनों किसने का विषय, कि चलो मैं दोनों में नए अंतर जानू तो क्या अंतर जानू, कि संसार भी व्यवहार नहीं का विषय है और मुक्ति भी व्यवहार नहीं का विषय। गुरुदेव ने तो बहुत अच्छा घटित किया था, निगोध की दशा भी व्यवहार नहीं का विषय है और सिद्ध की दशा भी व्यवहार नहीं का विषय है, दोनों का माने दोनों में लक्षण की अपेक्षा से, लक्षण क्या है दोनों का, कि दोनों का लक्षण उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे, दोनों का लक्षण क्या है कि दोनों चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं, दोनों का स्वरूप क्या है कि दोनों का जन्म क्षण एक समय का है, एक समय से ज्यादा दो समय भी कोई पर्याय टिकती नहीं, दोनों व्यवहार नहीं का विषय है, अरे दोनों आश्रय करने लायक नहीं है, दोनों जानने लायक है, हे तरीके जानने लायक है, आश्रय करने लायक नहीं है, दोनों अवतारत है, व्यवहार नहीं का विषय है, व्यवहार ने बदोय अवतारत होवा थी, आएंगे ग्यारहवीं गाथा में है कि नहीं, कि वो बात यहां पे कह रहे हैं, किस नए से जानू, कि व्यवहार ने, कि व्यवहार नए से तो दोनों एक ही, दोनों व्यवहार नए का विषय, व्यवहार नए से दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि दोनों पर्याय हैं और पर्याय को विषय करने वाला व्यवहार नहीं है। अब पर्याय में क्या विशेषता है, कि वो विशेषता हम नहीं देखते, हम तो एक समय की उत्पाद वे का जीवन है बस, उसका आश्रय। देखो एक होता है फेरी वाला और एक होता है पेढ़ी वाला, अंतर समझा है इसमें, फेरी वाला और पेढ़ी वाला का मतलब क्या होता है, कि एक आदमी कहता है कि हमारी 300 साल पुरानी दुकान है बंबई में, ये 300 साल पुरानी पेढ़ी है, पहले हम बैठते, अभी हम बैठते, पहले हमारे, उसके बाद हमारे पिताजी बैठते थे, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, 300 साल से हम यहीं के यहीं जमे, उसकी दुकान पर माल मिलता है और वही आइटम एक फेरी वाला लेके घूमता है, आज यहां कल वहां परसों वहां उसके बाद न जाने कहां, है ना। और फेरी वाले के यहां जो आइटम 4000 रुपए में मिलता है, पेढ़ी वाले के यहां वही आइटम 5000 रुपए में मिलता है, ब्रांड वही, कंपनी वही, सब कुछ वही। आप लोगों से प्रश्न मेरा कि आप वो आइटम किसके यहां से खरीदना पसंद करोगे, बताओ जरा, सस्ता ढूंढेंगे तो फिर बाद में ढूंढते ही रह जाओगे ना उसे, कि भाई हमें चाहे 1000 रुपए ज्यादा लग जाए, है ना, ये 4-5 हजार रुपए में भरोसा नहीं हो तो थोड़ा रेट बढ़ा देते हैं, कि एक आइटम 45,000 रुपए का फेरी वाला दे रहा है और 50,000 रुपए का पेढ़ी वाला दे रहा है, अभी किसके पास से खरीदोगे, 5,000 का फर्क है, है? पेढ़ी वाले से खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे, कि कल को कोई भी तकलीफ आई हमें तो हम यहां उसको बोल तो सकते हैं कि हम तुमसे लेके गए थे, तुम 300 साल पुरानी पेढ़ी की बात करते हो, और अगर हमने फेरी वाले से वो माल खरीदा तो मिलेगा ही नहीं, है ना, कि ये द्रव्य स्वभाव ये है पेढ़ी वाला, ये अनादि अनंत है, ये कहीं गया नहीं है, कहीं जाएगा नहीं, वो पेडी वाले की पेडी, उदाहरण के पेडी वाले की पेडी की तो शुरुआत भी हुई है, बंद भी कर सकता है, लेकिन ये त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा ऐसी पेडी है, ये अनादि अनंत यहीं की यहीं रहने वाली है, अनादि अनंत ज्यों की त्यों रहने वाली है। और पर्याय क्या है भैया, कि निर्मल हो तो भी क्या हुआ, कि निर्मल हो तो भी फेरी फेरी वाले है वो, एक समय में बदलेगी, एक समय में बदलेगी। तुम शिकायत करने जाओगे तो किसके पास जाओगे, जिसके पास शिकायत करने जाओगे वो कहेंगे भाई साहब जिस वो तो गई पर्याय पारनामिक। सोचो जरा क्या है तत्व, कितने कुछ भी अंतर हो, कई नैति झूम व्यवहार नय को, तो गुरुदेव ने बोला ना किस नय से जानू, आ एम करी ने जरी व्यवहार नयनी तुच्छता बतावी छे, तुच्छ है वो तो बात करता है खाली, जैसा व्यवहार कहता है वैसा वस्तु का स्वरूप है ही नहीं, है ना। अपन ने उस दिन उदाहरण से समझ लिया था वो बात को, वो खुद ही कह रहा है कि मैं व्यवहार नय हूं। व्यवहार नय का मतलब क्या, कि अपने घर पे कोई आवे और अपन लोग बोलते कि भाई साहब अपने ही घर समझना, इसे संकोच नहीं करना, है ना, तो अपना ही घर समझे, तो अपना ही घर समझे, तो अपने घर में जैसे हर चीज अपनी होती है नहीं होती, तो अपने घर अपना ही घर समझना, हां साहब अपना ही घर समझूंगा, और वो तिजोरी खोलने लगे कि क्या कर रहे हो, कि क्या कर रहे हो, अपना घर है तो क्या करोगे आप, कि मोबाइल उठाओगे नंबर 100 घुमाओगे, समझ में आ गया, कि अपना घर ऐसा कहने के लिए है। ऐसे ही व्यवहार नय का जो भी स्वरूप है ना, कि वो कहने के लिए है, व्यवहार नय जो भी बात करता है वो कथन मात्र है, वो खुद ही कह रहा है कि मैं व्यवहार नय हूं। और एक सत्य घटना है अपनी, तो को व्यवहार नय का उदाहरण समझने के लिए एक दिन तो बताई थी आपको असली सोने की नकली दुकान, नकली सोने की असली दुकान, है ना। और एक और उदाहरण ऐसा आता है, बहुत गजब का उदाहरण है ये भी व्यवहार नय का स्वरूप समझने के लिए, कि एक बार एक चोर था, अब जंगल में चोरी करना उसका काम, जंगल में घूम रहा था, घूमते घूमते एक भीड़ देखी उसने आदमियों की, एक मुनि महाराज थे जंगल में उपदेश दे रहे थे, सारे जैन समाज की भीड़ वहां पर लगी हुई, सारे अच्छे अच्छे नागरिक नगर के बैठे हुए, महाराज उपदेश दे रहे, उपदेश सुना, और सब ने किसी ने कोई नियम लिया, किसी ने कोई नियम लिया, सब लोग अपने अपने घर गए। चोर ने महाराज से कहा महाराज जी मुझे भी कुछ नियम दीजिए, कि तेरा काम क्या काम करता है, वो देखा कि अपने अपनी जाति बिरादरी का तो लग नहीं रहा है कि क्या काम करता है, तेरा काम क्या है, उन्होंने कहा कि साहब चोरी करना, सीधा बोल दिया कि साहब चोरी कर, महाराज से झूठ कैसे बोले कि चोरी करना, कि आज से छोड़ दे ये काम, कि देखो साहब ये काम मत छुड़ाओ आप, ये तो हमारे पुरखों का काम है, तो क्या करना, ऐसा कर एक नियम कर ले, कि आज से तू झूठ बोलने का त्याग कर दे, क्या कर दे, झूठ बोलने का त्याग कर दे, कि ठीक है महाराज आज से किया झूठ नहीं बोलूंगा। अब भाई साहब वो चोरी करने के लिए राज दरबार में गया, बड़ा चोर था शातिर था, तो राज दरबार में गया तो पहले शुरुआत में जो मुख्य द्वार होता है ना वहां से घुसा, वो घुसते ही पहरेदारों ने पूछा कौन है, अब झूठ तो बोलना नहीं उसको, तो उसने कहा चोर हूं जी, कि क्या करने आए हो, कि चोरी करने आया हूं, तो पहरेदारों ने सोचा कि चोर भी कभी बोलता है कि चोर हूं, तो उनने क्या किया कि अच्छा अच्छा भैया जाओ, उनने सोचा कि राजा ने कोई अपना गुप्तचर वगैरह भेजते थे ना ऐसा कोई होगा, तो उसको आने दिया, और आने देने के बाद भाई उसने जितना माल उसको चुराना था चुरा लिया, उसने अपनी पोटली बांधी अपने कंधे पे रखी, अब पिछले दरवाजे से वो जाने लगा, आया था इस दरवाजे से घुसा पिछले दरवाजे से निकलने लगा, तो फिर वो पहरेदारों ने पूछा कि अच्छा भैया ये बताओ कौन हो तुम, कि चोर हूं, कि क्या करने आए हो यहां पे, कि चोरी करने आया हूं, देखो ये माल लेके जा रहा हूं। अब वो पहरेदार भी घबराए कि ये तो कोई राजा का मामला लगता है, तो उसने उसे जाने दिया कि भैया तू जा। अब दूसरे दिन जैसे सवेरा हुआ और हड़कंप मच गया, राजा के महल में चोरी हो गई, पहरेदारों को बुलाया तुम क्या कर रहे थे, कौन आया था रात में, कि साहब एक आदमी आया था, कि क्या बोला था, कि ये बोल रहा था कि मैं चोर हूं, और उसने भी कहा कि साहब आया था, उनने कहा था मैं चोरी का माल लेके जा रहा हूं। अब उसको बुलाया, पकड़ा गया, बुलाया कि भाई तुम ऐसे, साहब मैंने चोरी करने की बात बराबर है, मैंने चोरी की है, मैंने मुनिराज से नियम लिया है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो मैंने आपके पहरेदारों को आते समय बताया था और जाते समय बताया था, अब इन्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं आया तो मैं क्या करूं ये बताओ। आया इसी तरह व्यवहार ने, ये कितना सत्य कहता है कि मैं झूठ बोलता हूं, नहीं आया समझ में, व्यवहार ने कितना सत्य कहता है कि मैं झूठ बोलता हूं। अब अज्ञानी को लगता नहीं, अरे ऐसा भी हो सकता है, जो नए सम्य ज्ञान का अंश हो, जिस नए को व्यवहार नए को जिनवाणी में जगह मिली हो, वो नए भी कभी झूठ बोलता है क्या, वो नए भी कभी असत्यार्थ प्रतिपादन करता है क्या, और ऐसा मान करके व्यवहार के कथन को सत्य मानते हैं, जबकि व्यवहार कह रहा है कि भाई मेरा स्वरूप यह है कि मैं जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं कहूंगा, ये मेरा स्वरूप है, मैं दवा की शीशी कहूंगा लेकिन पीने के लिए तुम शीशी को मत पी जाना, आ गया, यह है व्यवहार नहीं का स्वरूप। नहीं बोलो दवा की शीशी बोलते कि नहीं बोलते, अपन दवा की शीशी बोलते हैं और शीशी को पीते नहीं है, जिसको पीते हैं वो शीशी नहीं है और जो शीशी है उसे पीते नहीं है और बोलते हैं दवा की शीशी है, वहां हमें कोई तकलीफ नहीं होती। और जब जिनवाणी व्यवहार नय से पर्याय की बात करे, व्यवहार नय से पर्याय के पर्याय की व्यवस्था का निरूपण करे, है ना, तो हम उसी को सर्वस्व मान करके, उसी को सत्यार्थ मान करके, उसी को प्रयोजनभूत मान करके और उसे अंगीकार करने का प्रयास करते, जबकि वो कहते हैं कि मैं किस नय से भेद जानूं, ये कहकर के उन्होंने जो व्यवहार जो व्यवहार नय है उसकी तुच्छता बता दी। तुच्छता बता दी मतलब क्या, कि निगोद और संसार दोनों में मैं किस नय से भेद जानूं, इससे ज्यादा व्यवहार की तुच्छता क्या होगी। व्यवहार को ऐसा लिखा नियम सार में, इसी में गुरुदेव के प्रवचनों में आया कि व्यवहार नय नहीं तो काई गणतरीज नथी, ये गुरुदेव का शब्द है। बोलो क्या मतलब, जब हम व्यवहार नय की कुछ गिनती नहीं करेंगे ना तब हम सम्य दर्शन के लायक होंगे। अभी तो हमें व्यवहार, अरे व्यवहार ने कुछ तो है ना, पर्याय कुछ तो है कि नहीं, तुम पर्याय का सर्वथा निषेध करोगे तो एकांत नहीं हो जाएगा। ये जो बार 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 द्रव्य स्वभाव की बात चले, द्रव्य स्वभाव की पवित्रता की बात चले, द्रव्य स्वभाव की नित्यता की बात चले, द्रव्य स्वभाव की अनेक प्रकार से अद्भुत अद्भुत महिमा गुरुदेव श्री के वचनों में आवे, आचार्य भगवंतों के वचनों में आवे, ज्ञानियों के वचनों में आवे, और उस समय हमें पर्याय याद आवे, हां प्रभु वो ठीक है द्रव्य स्वभाव तो शुद्ध है लेकिन पर्याय में तो अशुद्धता है कि नहीं बोलो, द्रव्य स्वभाव तो पवित्र है लेकिन पर्याय में तो अपवित्रता है कि नहीं, अभी मुझे पर्याय में तो अपवित्रता का नाश करके पवित्रता प्रकट करना है ना, मुझे अशुद्धता का नाश करके शुद्धता प्रकट करना है ना। ये काम ठीक वैसा ही है कि जिस तरह शादी के मंडप में कोई राम धुन बजाए, ऐसा काम है ये, सच है ये कि मंगल अवसर, अरे महाभाग्य से तुझे द्रव्य स्वभाव की चर्चा सुनने का अवसर मिला, अनादि काल से पर्याय बुद्धि में तेरा जीवन चल रहा था, पर्याय बुद्धि में तू अपना सर्वस्व जीवन अर्पण किए हुए था, एक समय की पर्याय के पीछे पागल बना हुआ था, एक समय की पर्याय से अपने को अपना माप करता था, महाभाग्य से तुझे ये द्रव्य स्वभाव की चर्चा सुनने का अवसर आया। हमें द्रव्य स्वभाव की चर्चा चले और पर्याय को आचार्य भगवान नहीं है के स्तर पर गौण कर दे, गौण का मतलब क्या कि मानो वो है ही नहीं, इस स्तर तक उसे गौण करे, उस समय हमें एकांत दिखाई दे, अरे पर्याय को ऐसा करोगे, पर्याय को एकदम गौण करोगे तो एकांत हो जाएगा, ऐसा हमें दिखाई देता है। लेकिन आचार्य भगवान ये कहते हैं कि जब अनेक 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 प्रकार से तू पर्यायों की विविधता में, पर्यायों की विरूपता में तू उलझा हुआ था, क्या तुझे एक समय के लिए भी उस समय द्रव्य स्वभाव का विचार आया था? जब अनंत काल अनादि काल से लेकर आज तक तू पर्याय बुद्धि में अपना जीवन व्यतीत करता है, उस समय तुझे एक समय के लिए भी द्रव्य स्वभाव की याद नहीं आई। अरे होगी ना पर्याय में अशुद्धता, होगी ना पर्याय में मलिनता, होगी ना पर्याय में विकृति, द्रव्य स्वभाव में तो नहीं है, होगी पर्याय में। इस तरह तुझे उस पर्याय की उपेक्षा आकर के द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा का परिणाम नहीं आया। और जहां आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा कराकर पर्याय की उपेक्षा करने की बात कही, तो अनादि काल का जो पर्याय बुद्धि का व्यामोह था वो उमड़ उमड़ करके ऊपर आता है। लेकिन प्रभु आप द्रव्य स्वभाव की शुद्धता की चर्चा करते हो, लेकिन जरा पर्याय की अशुद्धता का ज्ञान तो कराओ। क्या कहा? द्रव्य स्वभाव की शुद्धता की आपने बहुत बहुत चर्चा की, लेकिन जरा इन लोगों को पर्याय की अशुद्धता का ज्ञान तो कराओ, कहीं ये निश्चयाभासी नहीं हो जाएं। अरे भाई, ये निश्चयाभासी होने का डर और ये प्रमाण ज्ञान का लोभ तेरे को वस्तु तत्व समझने नहीं देता है, है ना। एक इसके लिए बहुत सरल उदाहरण से इस बात को समझो कि अपने घर में एक बहुत मांगलिक प्रसंग चल रहा हो, मांगलिक प्रसंग है ना, और वर वधु को बोला कि भैया चलो समय वर्ते सावधान वाला है ना, और उस समय अम्मा जी आई कि एक थोड़ी देर ठहरो। क्या हुआ? क्यों ठहरे? क्या हुआ? कि देखो ये शादी तो होगी, लेकिन उसके पहले एक काम अपने को करना है। कि क्या काम करना है? कि आज तक अपने घर में जितने लोग मरे हैं, नहीं आया समझ में, कि आज तक अपने घर में जितने लोग मरे हैं पहले आधे घंटे उनको रोया जाएगा और बाद में ये मांगलिक काम अपन करेंगे। तो अपन क्या बोलते हैं, अम्मा जी इस मंगल में अमंगल की बात क्यों करते हो? रोने की बात तो छोड़ो, रोना है ये तो छोड़ो, अरे रोने की बात करते हो तो मंगल में अमंगल है। इसी तरह भगवान आचार्य देव, पूज्य गुरुदेव, जब भगवान द्रव्य स्वभाव की चर्चा करते हो, जब कारण परमात्मा की चर्चा करते हो, जब नित्य शुद्ध तत्व की चर्चा करते हो, और उस समय अपने को ये याद आवे कि प्रभु वो बात ठीक है कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा में कोई भेद नहीं है, कुबुद्धि और सुबुद्धि में कोई भेद नहीं है, लेकिन अनादिकाल से पर्याय में मिथ्यात्व तो रहा ना, लेकिन अनादिकाल से राग द्वेष का परिणमन तो चलता है ना, लेकिन ऐसा तो होता है ना, लेकिन ऐसा तो होता है ना। इस तरह बार 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 उस पर्याय बुद्धि के रस को हम घोटन करें तो ये अमंगल का मंगल कार्य में अमंगल करने जैसा है। आचार्य कहते व्यवहार नहीं की कुछ गणतरीज न थी, हूं कई नए कयू एम कहे छे। अरे प्रभु तारा मां अने सिद्ध मां कई नए थी भेद करूं। बोलो क्या बोलते हैं अभी, क्या कह रहे हैं आचार्य? तुझ में और सिद्ध में, तो तुझ में और सिद्ध में कहकर के सिद्ध और वर्तमान में, मैं वर्तमान में और सिद्ध में, ये कहकर के भेद उनके ज्ञान में नहीं है। अगर भेद ज्ञान में नहीं होता तो तुझ में और सिद्ध में ये बात कहां से आती? लेकिन भेद ज्ञान में होने पर भी भेद को तवज्जो नहीं देते। हम तो उस चीज को देख रहे हैं कि जो उनमें है वो ही तुझ में है, और जो तुझ में है वो ही उनमें है। जैसी तुझ में है वैसी उनमें है, और जैसी उनमें है वैसी तुझ में है, और वो चीज क्या है? कि वो चीज है तेरा त्रिकाली द्रव्य स्वभाव आत्मा। क्या अंतर देखूं मैं? अंतर देख, अच्छा दूसरी बात कि अंतर देखते देखते अनंत काल हो गया, अंतर मिटा नहीं? मिटा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अंतर देखना अंतर मिटाने का उपाय नहीं है, क्योंकि यदि अंतर देखना अंतर मिटाने का उपाय होता तो अब तक अंतर मिट गया होता। आचार्य कहते हैं जो काम अनादि काल से तू करता आया है, अब थोड़ी देर के लिए उस काम को विराम दे। अभी क्या कर कि जो अंतर देखने की तेरी दृष्टि है, उस अंतर देखने की दृष्टि को दबा दे, और एक बार सिद्ध में और मुझ में कुछ भी अंतर मैं किस नए से देखूं, एक बार उस द्रव्य स्वभाव की अंतर नहीं देखने वाली दृष्टि को एक बार मुख्य कर, एक बार वो दृष्टि प्रकट कर। और एक बार अगर वो दृष्टि प्रकट की तो बाद में तुझे अंतर दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अंतर रहेगा तो दिखेगा। भई अंतर क्यों है, जिसको अपन अंतर कहते हैं पर्याय का, तो पर्याय का अंतर भी क्यों है कि द्रव्य स्वभाव को नहीं देख रहे, इसीलिए तो अंतर है। हम द्रव्य स्वभाव को नहीं देख रहे, एक समय की पर्याय को देखते हैं, अंतर तो इसी का नाम है ना। जब हमने द्रव्य स्वभाव को देखा, अब उससे बोलो कि बताओ अब अंतर बताओ तुम, कि द्रव्य स्वभाव को देखा तो क्या पर्याय ने क्या मान करके द्रव्य स्वभाव को देखा, कि मैं तो अनादि अनंत नित्य शुद्ध परम पारनामिक भाव हूं। उस पर्याय का स्वर बदल गया, जो पर्याय अपने को रागी द्वेषी मलिन विकारी मानती थी, उस पर्याय का स्वर बदल गया, और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करके वो पर्याय अंदर से उघड़ती हुई बोलती है, क्या बोलती है कि सिद्ध में और अपने में मैं अंतर कुछ भी अंतर किस नए से देखूं। अभी तो आचार्य कह रहे हैं कि कुबुद्धियों में और सुबुद्धियों में कुछ भी भेद मैं किस नए से देखूं, लेकिन जब अपनी दृष्टि अंतर्मुख होगी तब अंतर्मुख दृष्टि में से जो पर्याय प्रकट होगी वो पर्याय का स्वर यह होगा कि मैं अपने में और सिद्ध में कुछ भी अंतर किस नए से देखूं। अरे अंतर देखने का नए ही मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो एक ही नए है, और वो नए है शुद्ध नए, कि जिस नए से मुझ में और सिद्ध में मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं देता। ये कहकर के गुरुदेव ने कहा व्यवहार की तो मखोल उड़ाई है। ये आचार्य देव ने भी कहा, आलोचना अधिकार में एक कलश है, कलश लिखते लिखते आचार्य देव को विचार विकल्प आया कुछ, उन्होंने एक गद्य लिख दी, गद्य में एक लाइन लिख दी, क्या लिख दी कि इस प्रकार यहां सूत्रकार भगवान आचार्य कुंद देव ने व्यवहार आलोचना के प्रपंच का उपहास किया है, यह शब्द का प्रयोग किया है। विचार करो क्या वस्तु स्वरूप है, क्या गजब बात है ये, है ना। ऐसी दृष्टि अंदर में खुलनी चाहिए अपन लोगों की। वो तत्व जो वजनी तत्व है, वजनी बात क्या है, अब ऐसे देखो तो वजनी बात क्या है, एक समय का अंतर है वो वजनी बात है, कि अनादि अनंत अंतर है ही नहीं, द्रव्य स्वभाव अनादि अनंत निरंतर है, माने द्रव्य स्वभाव में अनादि से लेकर आज तक और आज से लेकर अनंत काल तक कभी अंतर नहीं रहेगा, अंतर नहीं होगा। वजनी बात वो है कि एक समय की पर्याय का अंतर है, वो बात वजनी है। किस बात पर वजन देना चाहिए लोक में भी, एक बात तो अपन ही सोचे ना, कि एक आदमी कौन कहे अपने से, कि कोई भी एक सड़क चलता आदमी कहे कि ठीक है भैया आज तुम हमारी दुकान पर आना, मैं तुझे 1 करोड़ का इनाम दूंगा, ठीक है, है ना। और एक अपना देश का मैंने कोई बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर या कोई भी ऐसा आदमी कहे कि आज आपको 1 करोड़ का चेक दिया जाएगा, अभी बताओ किसकी बात पर विश्वास करोगे। कि जिसने उस सड़क चलते आदमी ने कहा था कि आप आ रहा मेरी पेड़ी पे, मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, हाँ पेड़ी नहीं है उसकी, जिसकी पेड़ी नहीं है वो पेड़ी की बात करता है, तो उस पर भरोसा करते अपन। आज हम आज तक यही करते आ रहे हैं कि पर्याय की कोई पेड़ी नहीं है और पर्याय की उस पर भरोसा करते आ रहे हैं। और त्रिकाली स्वभाव ऐसा कि तू एक समय की ओर नजर तो कर, नजर किया और निहाल हुआ, समझ में आया, नजर नहीं की इसलिए बेहाल हुआ है, नजर कर तो निहाल हो जाएगा। उस स्वभाव की हम नजर नहीं करते, उसका भरोसा नहीं करते, उसका विश्वास नहीं करते, आया समझ में। यह बात कहकर के आचार्य देव अपने को उस त्रिकाली स्वभाव का विश्वास दिलाना चाहते हैं, कि जिस बात को बताते हुए गुरुदेव श्री ने 3 बार इस प्रवचन में बोला, भाई भाव इतना भाषित होता है उतने शब्द नहीं आते हैं। अब आप सोच लो जरा, कि गुरुदेव को जब ये कलश पर वो प्रवचन करते होंगे तो इस कलश में उनको क्या दिखा होगा, हम तो कल्पना कर सकते हैं, है ना। ऐसा अद्भुत, अद्भुतम, अद्भुत कलश ये है। आगे अपन और इसी की चर्चा करेंगे।
सीमंदर घनधर संत नाथ में सतसंगी अम पामर तारण का पधार्या करुणांगी तुझ ज्ञान ध्यान नोरा गम आदर्श रहो हो शिव पद तक तुझ सा गमाता हाथ ग्रहो हो शिव पद तक तुझ सा गमाता हाथ ग्रहो।
निष्कर्म अवस्था ने प्राप्त ऋजबादिति महावीर पर्यंत 24 जिनेन्द्र भगवान नो दिव्य ध्वनि ना दाता रेवा सिमंदरादिति अजित वीर्य पर्यंत विश्वविरमान जिनेन्द्र भगवान नो अद्य जिन मंदिर में बिराजमान अखंड सारना प्रत्येक एवं श्री बाहुबली मुनिन्द्र भगवान नो स्यादवाद रूप अनेकांतमय बे विरोध दैने अविरतपणे प्रकाशनारी समयसार नियमसार प्रवचनसार आदि समस्त जिनवाणी मात नव प्रमत प्रमदशामा झूलनारा कलिकाल सरुग्न देव कुनकुन आदि समस्त आचार्य उपाध्याय साधु गुरु भगवान नव जिनवाणीना ऊंडा अने गहन रस समझावनार अनंत अनंत उपकारी श्री कहान गुरु देव नव कान गुरु महिमा बतावनार प्रसन्न मूर्ति भगवती मात नव अपूर्व सरने आत्मसिद्धिना दाता रेवा कृपाळु देवनो श्री परम पवित्र सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्मनो
निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।